राधिका के घर आने से अप्पू और बाकी दोनों बहनों के साथ आशुतोष जी भी काफी खुश नजर आए। बहुत वक्त बाद उन्होंने अपनी चारों बेटियों संग इतना वक्त बिताया। उनकी चुहलबाजियों शरारतों से पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। हंसी ठहाकों की आवाज़ से सूने आंगन में रौनक सी लग गई। उन चारों ने भी बहुत वक्त बाद इतना वक्त अपने घर में एक साथ बिताया था, इस ख्याल के साथ कि जाने अब दोबारा कब चारों एक साथ हों और ऐसा मौका उनके नसीब में आए। चारों खूब मस्ती करती थीं, एक दूसरे के साथ पूरा वक्त बिताती, पुराने दिनों की याद करती। एक दूसरे को छेड़ना, उनके पतियों और होने वाले पतियों का नाम लेकर चिढ़ाना आम सी बात हो गई थी। यूं ही हंसी खुशी शादी की तैयारियों में दिन कट गए थे। कल से शादी की रस्में शुरू थीं। मेहमानों से अब घर भर चुका था। अप्पू मैडम की तो रोज ही निशान से बात होती थी, पर राधिका को मौके जरा कम मिलते। अपनी बहनों और पापा के बीच उसे अकेले वक्त ही मुश्किल से मिलता था। उस पर शादी की जिम्मेदारियां भी वही निभा रही थी, पर इस बार माधव उसका सहारा बनकर उसके साथ खड़ा था। बाहर का लगभग सारा काम उसी ने देखा था। रोज तो नहीं, पर कुछ दिनों में उनकी मुलाकात हो जाती थी, भले ही कुछ देर के लिए ही सही। बात भी हो ही जाती थी, पर ये दूरियां दोनों को ही बेचैन कर रही थीं। शाम का वक्त था, चारों बहनें एक साथ बैठी गप्पे मार रही थीं। जीजी, मैं आजकल आपको जीजू से बात करते नहीं देखती, कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया आपकी उनसे? बातों बातों में अप्पू ने ये बात छेड़ दी थी। बात सच थी, पिछले दो तीन दिनों से माधव से उसकी ठीक से बात नहीं हुई थी, और आज तो जाने क्यों, पर मैडम का पारा भी हाई था, सो माधव का जिक्र सुनते ही भड़क गईं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, तुम्हारे जीजू कुछ ज्यादा ही बिजी हैं, तो उन्हें ना मेरी याद आती है और ना बात करने का कोई होश रहता है। मैं नहीं मानती, जीजू इतनी मोहब्बत करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको याद ना करें, फ़ोन करके आपसे बात ना करें। आप एक पल को उन्हें भूल सकती हैं, पर वो नामुमकिन है। लो भाई, अप्पू मैडम तो पूरी तरह से अपने जीजू की चमची बन गई थी। दीदी को गलत कह गई, पर जीजू पर लगा इल्ज़ाम ना सह सकी। राधिका खींचते हुए आँखें छोटी छोटी करके उसे घूरने लगी। तुम बड़ी जीजू भक्त हो रही हो, मेरी बहन हो, मेरे ही खिलाफ जाकर उनका साथ दे रही हो, शर्म नहीं आती? ऐसे थाली के बैंगन जैसे पार्टी बदलते? जिसने किए शर्म उसके फूटे कर्म, और हम तो पैदा ही शर्महीन और कर्महीन हुए थे, फिर सच बोलने में कैसी शर्म? जीजू करते हैं आपके प्यार तो करते हैं, और आप पर जान छिड़कते हैं ये तो सभी जानते हैं। अप्पू मैडम ने खुद ही बड़ी ही लापरवाही से अपनी ही फजीहत कर डाली, पर माधव की तरफदारी करना ना भूली। राधिका बुरी तरह खींच उठी और वहां से उठकर जाने ही लगी थी कि उसका फोन बज उठा। राधिका से पहले उसकी तीनों बहनें फोन में घुस गईं, जहां बाकी दोनों स्क्रीन पर चमकता नाम और तस्वीर देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए निगाहों से राधिका को छेड़ने लगी। वहीं अप्पू मुंह फाड़कर बोल पड़ी, लो नाम लिया, और शायद उसका इतना कहना था कि राधिका ने घूरकर उसे देखा। आगे के शब्द वो डकारते हुए पेट में हजम कर गई। गलती का एहसास होते ही अपनी जीप को दांतों तले दबा लिया और हड़बड़ाते हुए अपनी गलती सुधारने लगी। मेरा मतलब था कि अभी हम जीजू के बारे में ही बात कर रहे थे और उनका फोन आ गया, बड़ी लंबी उम्र होगी जीजू की। जाओ नदी, बात करो। राधिका की बहन ने फोन उसकी ओर बढ़ाया तो राधिका की घूरती निगाहें अप्पू से हटाकर स्क्रीन पर पड़ी। यकीनन अब माधव की शामत आने वाली थी। फोन लेकर राधिका अपने कमरे में चली आई। कॉल रिसीव तो किया, पर लबों को कुछ भी कहने की जहमत ना दी। कुछ पल की खामोशी के बाद दूसरे तरफ से माधव की आवाज आई, हेलो राधिका, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मन नहीं है बोलने का, राधिका ने उखड़े हुए मूड से जवाब दिया। दूसरे तरफ से माधव ने उसकी आवाज पर गौर फरमाते हुए सवाल किया, राधिका आप नाराज हैं क्या मुझसे? नहीं तो मैं भला क्यों आपसे नाराज होने लगी? राधिका ने फिर रूखे अंदाज में जवाब दिया। अलग ही अंदाज थे उसकी महबूबा के भी, खफा भी थी, जता भी रही थी, पर बताने से परहेज था। माधव मुस्कुराया। इतने में राधिका की कठोर आवाज उसके कानों से टकराई, कब फोन किया था मैंने आपको, और आप पलट कर कब फोन कर रहे हैं? वो माधव जवाब दे ही रहा था कि राधिका ने उसे टोक दिया, कोई जरूरत नहीं अब सफाई देने की, मुझे अब कुछ सुनना ही नहीं है। यहाँ राधिका नाराजगी से अपना खून जला रही थी, और वहां माधव नाराजगी दिखाने का उसका ये अनोखा अंदाज देखकर मुस्कुरा रहा था। अरे आप तो सच का नाराज हो गई, झूठ का नाराज होना कैसे होता है, और आपने नाराजगी वाले काम किए हैं या नहीं? राधिका तुनकते हुए बोली। उसका गुस्सा देखकर माधव सहम सा गया। राधिका आप तो मास्टरनी बन गई, अपने बेचारे सीधे साधे भोले से पति को डांट लगा रही हैं। मैं मास्टर नहीं हूं, और मेरे पति कोई भोले भाले नहीं है, और डांट खाने की हरकतें हैं आपकी तो डांट खाएंगे ही। राधिका ने उस पर जरा भी रहम न खाया, फिर झिड़क दिया, पर वो यही नहीं थमी। नाराजगी गुस्सा कुछ ऐसा बढ़ा कि माधव को सुनाती ही चली गई। यहाँ मैं सुबह से परेशान हूँ कि पता नहीं कैसे होंगे, तबीयत खराब में रेस्टोरेंट चले गए हैं, ये नहीं कि एक दिन आराम कर लें। खुद से फोन करने में तो अब आपकी उंगलियां दुख जाती होंगी, ऐसे तो दिन में 75 बार आपको फोन करके मुझे परेशान करना होता है, पर जब जरूरत थी तो सारा दिन मिस्टर इंडिया बने गायब रहे। खुद से तो फोन किया नहीं गया, कम से कम बंदा कॉल बैक ही कर ले, इतना भी वक्त नहीं तो एक मैसेज ही कर दे कि ठीक है। पर नहीं, यहाँ बीवी परेशान होती है तो हो आपको क्या, आप फोन को तिजोरी में बंद करके जिंदगी के मजे लीजिए, खूब ऐश कीजिए, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र, कहने सुनने वाला भी कोई नहीं तो जो मन में आए कीजिए। गुस्से और नाराजगी से भड़की राधिका की बातें सुनकर माधव के मुस्कुराते लब सिमट गए और चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। ऐसा नहीं है राधिका, मैं काम में उलझा था और मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि कब आपका फोन आया, मिस कॉल कर भी ध्यान नहीं गया, वरना कॉल बैक तो जरूर करता। मैंने कहा ना, मुझे आपका कोई बहाना नहीं सुनना है, बहुत गैर जिम्मेदार हो गए हैं आप, मुझे वहां आने दीजिए, फिर देखिए कैसे आपके सारे नट बोल्ट कसकर आपको एकदम ठीक करती हूँ। गुस्सा चरम पर था, गनीमत थी जो माधव सामने नहीं था, वरना जाने राधिका गुस्से में उसके साथ क्या ही कर जाती। राधिका, आप तो धमका रही हैं मुझे, माधव ने आंखों की पुतलियों को आश्चर्य से फैलाकर उसे देखा। राधिका ने उसी कठोर लहजे में जवाब दिया, मैं धमका नहीं रही, चेता रही हूँ कि सुधर जाइए वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। चलिए सुधर गया, अब से सुबह शाम फोन करके आपको अपनी खैरियत की खबर दे दूंगा, अब तो अपना गुस्सा छोड़ दीजिए, माधव ने प्यार से उसे मनाया, पर राधिका ने चिढ़ते हुए मुंह बना लिया। तबीयत कैसी है अब आपकी? कुछ पल की खामोशी के बाद राधिका ने चिंतित स्वर में सवाल किया, पर आवाज में नाराजगी भी झलक रही थी। अब आपकी आवाज सुन ली तो बिल्कुल ठीक हो गई, माधव ने कशिश भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिससे राधिका और ज्यादा चिढ़ गई। ज्यादा नौटंकी नहीं, यहाँ अभी तक माफ नहीं किया है मैंने, तो मेरे सवाल का सीधे से जवाब दीजिए, तबीयत कैसी है अब आपकी? ठीक है, माधव ने गंभीर चेहरा संक्षिप्त में जवाब दिया। राधिका ने अगला सवाल किया, बुखार? अब नहीं है, सुबह तक उतर गया था। जुकाम? एक दिन में तो ठीक हो नहीं सकता, पर आराम है, कल से तो बेहतर ही कंडीशन है। दवाइयां ली आपने? सुबह ली थी, अभी लेने की जरूरत नहीं लग रही। क्यों, बिल्कुल ठीक हो गए क्या आप? राधिका फिर चिड़ी, पर माधव गंभीर बना रहा, नहीं पर जुकाम तो खुद ही ठीक हो जाता है ना। राधिका अब चुप भी साध गई तो माधव नहीं आगे कहा, वैसे राधिका आप तो बिल्कुल मम्मी जैसे मेरे पीछे पड़ गई हैं, मम्मी भी ऐसे ही डांटती हैं, बस आपसे थोड़ा कम, क्योंकि वो माँ है और मैं आपकी पत्नी। राधिका ने फिर नाराजगी में मुंह बनाया और उधर माधव मन ही मन हंस पड़ा।
अच्छा धर्मपत्नी जी, जरा सुनिए तो सही। मोहब्बत के एहसासों से भरी मीठी सी आवाज राधिका के कानों से टकराई और नाराजगी कुछ फीकी सी पड़ती नजर आई, पर वो नर्म ना पड़ी और झल्लाते हुए बोली, क्या है, याद करती है मुझे? नहीं, राधिका ने बड़ी ही बेरहमी से उसके प्यार भरे दिल को तोड़ दिया, पर उम्मीद अब भी कायम थी। सच में नहीं करती? नहीं, राधिका फिर उसकी कोमल भावनाओं को सख्ती से ठुकरा दिया। वैसे रूट कर गुब्बारे जैसे मुंह फुलाए झूठ बोलती हुई काफी क्यूट लगती हैं आप। माधव की कोमल शब्द राधिका के कानों से टकराए और वो घबराकर आसपास नजरें घुमाने लगी। देखा तो माधव उसके कमरे के गेट से टिककर खड़ा, एक हाथ जेब में डाले दूसरे से फोन को कान पर लगाए, सौम्य सी मुस्कान लबों पर सजाए उसे ही निहार रहा था। पहले तो अचानक माधव को अपने सामने देखकर वो चौंक गई, फिर याद आया, अरे वो तो उससे नाराज है, कि तुरंत ही मुंह ऐंठ लिया और उसकी इस अदा पर माधव हंस पड़ा। उसने कॉल कट करके मोबाइल अपने जेब के हवाले किया और कदम राधिका की ओर बढ़ा दिए। लगता है कोई अब भी नाराज है हमसे, इस सरप्राइज से भी नाराजगी कम नहीं हुई। क्यों आए हैं आप यहाँ? राधिका ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए तुनकते हुए सवाल किया और नाराजगी से उसे घूरने लगी। अपनी बीवी से मिलने आया हूँ, 3 दिन हो गए देखे और कुछ नाराज भी चल रही हैं हमसे, तो सोचा आकर मना ही लिया जाए। माधव मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गया और जैसे ही उसके हथेली को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, राधिका ने अपनी हथेली को पीछे हटा लिया। क्यों, जरूरत ही क्या है मनाने की? राधिका, माधव ने अब गंभीर स्वर में उसे पुकारा और सर्द निगाहों से उसे देखने लगा। राधिका मुंह फुलाकर खामोशी से बैठ गई। माधव ने उस शरीफ सी बच्ची को देखा, फिर मन ही मन मुस्कुरा दिया। राधिका की हथेली थामकर उसने अपने माथे और गर्दन पर लगाया। देखिए बुखार नहीं है, फिर नाक से कोर सांस ऊपर की ओर खींच ली। देखिए नाक भी बंद नहीं, मतलब जुखाम भी आराम है। इसके बाद उसने अपना फोन निकालकर कॉल हिस्ट्री खोलकर उसके सामने रख दी। अब इधर देखिए, सुबह मार्केट जाते हुए फोन घर पर रह गया, तब कितने कॉल्स आए थे, इन सब लाल लाल नंबरों में आपका नंबर मिस हो गया। आई नो गलती मेरी है, पर मैं बिजी था तो इतना ध्यान नहीं दे पाया। फिर भी मेरे वजह से सुबह से आप परेशान रही, लापरवाही हुई मेरी ओर से, उसके लिए माफी चाहता हूँ। इतना शांत बंदा और ऐसी शख्सियत, कोई नाराज हो भी तो कैसे? राधिका भी अपनी सारी नाराजगी भूल गई और उसके सीने से लग गई। 3 दिन बाद अब जाकर उसके बेचैन दिन को करार आया था। आप सच में मुझे मनाने आए हैं? कुछ देर बाद राधिका ने उसके सीने से सर बाहर निकालते हुए सवाल किया, जिस पर माधव ने इनकार में सर हिला दिया। नहीं, राशन और पूजा का सामान पहुंचाने आया था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। जैसे ही माधव चुप हुआ, राधिका ने नाराजगी से उसे घूरा और उसके सीने पर मुक्का जड़ दिया। बहुत बुरे हैं आप। राधिका ने उससे दूर होना चाहा, पर माधव ने उसे अपनी बाहों के घेरे में कसते हुए अपने सीने से लगा लिया। राधिका भी उसे छूटने को कसमसाती रही, उसके सीने पर मुक्के बरसाती रही और माधव मुस्कुराता रहा। अरे बाबा, सामान कल भी दे सकता था, अभी आया ताकि आपसे मिलने का मौका मिल जाए। अब तो मुझ पर अपने मुक्कों से प्रहार करना बंद कीजिए। माधव के शब्द राधिका के कानों से टकराए तो वो ठहर गई और भौं से कूड़े उसे घूरने लगी। सच कह रहे हैं? झूठ क्यों कहूंगा, आपके अलावा और किससे मिलने आऊंगा यहाँ, और पूजा तो कल ही है ना, पर अभी आया तो आपके लिए ही आया हूं ना। अब जाकर राधिका शांत हुई और उसके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए उसकी पीठ पर अपनी बाहों को लपेट दिया। माधव ने भी मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों के घेरे में यूं कसा जैसे उसे खुद में संभाल लेने को बेताब हो। टू बी कंटिन्यूड, जाते जाते समीक्षा करते जाइए, इतना प्यारा पाठ लिखा है, बदले में चंद शब्द तो आप ही लिख सकते हैं।